सुनहरी धूप खिड़की से छनकर रसोई की टाइल्स पर गिर रही थी। रैना बाल ऊपर बांधकर अखिल के बड़े टी शर्ट में गैस के सामने खड़ी थी, हाथ में बेलन, सामने तवा और कटोरी में आलू का मसाला। उसके चेहरे पर कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं, ना ही कोई बनावटी मुस्कान। वो अपने ही ख्यालों में थी, पर हाथ चलते जा रहे थे। अखिल दरवाजे की चौखट पर खड़ा था, चुपचाप उसे देखता हुआ। उसके हाथ में कॉफी का मग था, लेकिन उसका ध्यान उस गर्म कॉफी से ज्यादा उस गर्म पराठे की खुशबू और रैना की हरकतों पर था। ऐसे लग रहा है जैसे तुम मेरी बीवी हो, उसके मुंह से अचानक फिसल गया। रैना ने पल भर को सिर घुमाया, फिर हंसी नहीं, बस हल्का सा सिर झुकाकर पराठा पलटने लगी। मैं बीवी नहीं हूं, याद है ना, सिर्फ तुम्हारी डील हूं, रात के लिए, सुबह के लिए नहीं। उसके शब्द नुकीले नहीं थे, बस सच्चाई लिए हुए थे। अखिल थोड़ा झेंपा, मगर अंदर कहीं कुछ चुभा नहीं, उल्टा अजीब सा सुकून हुआ था, एक घर जैसा सुकून। वो सुकून जो शब्दों से नहीं, दृश्यों से आता है। रसोई में कोई मौजूद हो जो सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा कि वो मजबूर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो वहां है। पर फिर भी, अखिल ने धीरे से कहा, तुम हो। रैना ने अब की बार सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं, कोई उथल पुथल नहीं, पर वो खामोशी जो कुछ कहती थी। हाँ, मैं हूं, उसने कहा, पर हर बार जब तुम मुझे सुबह इस तरह देखोगे तो याद रखना ये हमारा सौदा नहीं था। अखिल को ये बात चुभी, शायद इसलिए नहीं कि वो गलत थी, बल्कि इसलिए कि वो बहुत सच थी। उसने मग की आखिरी चुस्की ली और धीमे से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। रैना ने प्लेट में दो गर्म पराठे रखे, अचार और दही के साथ उसके सामने रखे, फिर खुद सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। दोनों कुछ देर तक खाते रहे बिना किसी और बात के, सिर्फ प्लेट की खनक और बीच बीच में शॉर्ट झलकियां जो दोनों एक दूसरे को देती थीं। तभी ट्रिंग ट्रिंग, रैना का फोन बजा। उसने धीरे से देखा, पापा हॉस्पिटल, फ्लैश हो रहा था। उसने हल्का सा कांपते हुए कॉल उठाया। हेलो, फोन के उस तरफ से आवाज आई, हड़बड़ाई हुई, घबराई हुई। मैम, आपके पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, बीपी बहुत लो है और सांसें तेज चल रही हैं, आईसीयू में ले जाना पड़ा है। बाकी शब्द धुंधले हो गए, रैना की उंगलियों से फोन फिसलते फिसलते बचा। उसने बिना कुछ कहे कुर्सी से उठकर अंदर कमरे की ओर तेजी से बढ़ना शुरू किया। अखिल ने उसकी आंखों का रंग देखा, वहां डर था, अफरा तफरी थी। क्या हुआ, उसने कुर्सी पीछे धकेलते हुए पूछा। पापा हॉस्पिटल में, हालत, शब्द उसके गले में अटक गए। मैं तैयार होता हूँ, चलो साथ चलते हैं, अखिल ने तुरंत कहा। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं मैनेज कर लूंगी, रैना ने जल्दी से बैग में कुछ जरूरी चीजें डालते हुए कहा। रैना, ये कोई जिद का वक्त नहीं है, मैं चल रहा हूं बस। पर ये हमारे सौदे का हिस्सा नहीं है अखिल, मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहती। तुम सौदे के बाहर भी इंसान होते हैं, अखिल ने उसकी बात काटते हुए कहा। और मैं अभी इंसान बनना चाहता हूं, बेड पार्टनर नहीं, चलो। रैना की सांसें लड़खड़ाई, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसके हाथ थम गए, फिर बस सिर झुकाकर हां में हिलाया। स्थान, हॉस्पिटल, आईसीयू वेटिंग एरिया। समय, दोपहर 12:17 PM। हॉस्पिटल की सफेद दीवारों में अजीब सी बदबू थी, दवाइयों, मौत के डर और उम्मीदों की मिलीजुली गंध। रैना एक कुर्सी पर बैठी थी, दोनों हथेलियां आपस में चिपकी हुई, आंखें दरवाजे पर टिकी। अखिल उसके पास बैठा था, पर एक शब्द भी नहीं कहा, बस उसका हाथ धीरे से पकड़ा हुआ था, बिना ज्यादा दबाव के, बस इतना कि रैना को लगे कि वो अकेली नहीं है। एक नर्स बाहर आई। डॉक्टर आपको बुला रहे हैं, रैना उठी, उसके पैर कांप रहे थे। अखिल साथ चला, लेकिन दरवाजे के पास रुक गया। मैं यहीं इंतजार करता हूं, उसने कहा। रैना एक नज़र उसकी ओर देखकर अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर निकली, आंखों में आंसू नहीं थे, पर होंठ सूख चुके थे। अभी खतरा टला नहीं है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि अगले कुछ घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। अखिल ने एक गहरी सांस ली, फिर उसके पास आकर बैठ गया। कुछ मिनट तक दोनों चुप बैठे रहे। तुम आ गए, अच्छा किया, रैना ने धीमे से कहा। मैं आता ही, अखिल बोला, फिर उसने उसकी ओर देखा। अगर कभी, रैना ने उसकी तरफ देखा, अभी नहीं पूछो, उसकी आंखें अब भर आई थीं। जब पापा ठीक हो जाएं और जब हम दोनों अपने खालीपन से बाहर निकल सकें, तब पूछना। अखिल ने सिर हिलाया, अब उसके हाथ की पकड़ थोड़ी मजबूत थी, और शायद उस सुबह पहली बार सौदे से ज्यादा कुछ महसूस हुआ था। क्या अब अगला अध्याय आईसीयू की खिड़की के पास, जब रिश्ते परछाइयों में उगते हैं, नाम से शुरू किया जाए।